कार हवेली के बाहर आकर धीरे से रुक गई। इंजन बंद होते ही जैसे एक अजीब सी खामोशी चारों तरफ फैल गई। अदिति का हाथ अब भी रत्ना देवी के हाथ में था, लेकिन इस बार पकड़ में सुकून नहीं, एक भारीपन था। रत्ना देवी कुछ पल तक खिड़की के बाहर देखती रहीं, फिर बिना उसकी तरफ देखे बोली, अदिति, तुमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन हर शब्द में एक गहरा वजन था। अदिति का दिल एकदम धड़क उठा। दादी, मैं? रत्ना देवी ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। नहीं, पहले मेरी बात सुनो। अब उन्होंने धीरे धीरे उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में नरमी नहीं थी, सिर्फ सच्चाई थी। तुमने जो अभी बताया उससे ये तो साफ हो गया कि शामली गलत नहीं थी, लेकिन एक बात जो तुमने नहीं कही वो मैं तुम्हारी आंखों में पढ़ सकती हूं। अदिति की सांसें अटक गईं। कौन सी बात? रत्ना देवी थोड़ी आगे झुकी। उनकी नजरें सीधी अदिति के अंदर उतर रही थीं। तुम शामली से जलने लगी थी, है ना? ये सुनते ही अदिति जैसे पत्थर बन गई। उसके होंठ खुले लेकिन आवाज नहीं निकली। तुम्हें लगा कि वो तुम्हारी उम्र, लेकिन फिर उसे तुमसे ज्यादा महत्व क्यों? और तुम ये सहन नहीं कर पाई। रत्ना देवी ने एक एक शब्द साफ कहा। अदिति की आंखों में आंसू भरने लगे। दादी, मैंने ऐसा नहीं, तो क्या ये भी झूठ है? रत्ना देवी की आवाज थोड़ी सख्त हो गई। कि तुमने उसे झूठे इल्जाम में फंसवाया, उस इल्जाम में ताकि उसे हवेली से बाहर कर दिया जाए। अब अदिति पूरी तरह टूट गई। उसने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। मैं बस डर गई थी दादी, मुझे लगा अगर वो यहीं रही तो सब कुछ मुझसे छिन जाएगा, और उसकी आवाज कांप गई, और शायद मेरा अपना ही स्थान। कार के अंदर सिसकियों की आवाज गूंजने लगी। रत्ना देवी चुपचाप उसे देखती रहीं, फिर धीरे से बोली, डर इंसान से गलतियां करवाता है अदिति, लेकिन तुम्हारी ये गलती सिर्फ गलती नहीं थी, ये किसी की जिंदगी बदल देने वाला फैसला था। अदिति ने आंसू भरी आंखों से उनकी तरफ देखा। मुझे नहीं पता था कि बात इतनी दूर तक चली जाएगी। मैं बस उसे दूर करना चाहती थी, लेकिन तुमने उसे तोड़ दिया। रत्ना देवी ने उसकी बात पूरी की। कुछ पल के लिए दोनों चुप हो गए, फिर रत्ना देवी ने गहरी सांस ली, जैसे कोई बहुत बड़ा फैसला ले रही हूं। खैर, जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। अदिति ने उम्मीद भरी नजरों से उनकी तरफ देखा। तो अब क्या करें? क्या हम पापा को सब सच बता दें? रत्ना देवी ने तुरंत सिर हिलाया। नहीं, ये नहीं इतना सख्त था कि अदिति सहम गई। ये सच यहीं खत्म होगा, तुम और मैं, बस हम दोनों तक। लेकिन दादी, तुम नहीं जानती विश्वनाथ को। रत्ना देवी की आवाज अब भारी हो गई। अगर उसे ये पता चला कि उसकी बहू ने इतनी बड़ी चाल चली है तो वो टूट जाएगा। और सिर्फ वो ही नहीं, उन्होंने हवेली की तरफ देखा, ये पूरा घर टूट जाएगा। अदिति के हाथ कांपने लगे। लेकिन झूठ के साथ हम कब तक? कभी कभी, रत्ना देवी ने बीच में ही कहा, सच छुपाना ही सबसे बड़ा सच होता है, खासकर तब जब वो सच सिर्फ तबाही लेकर आए। अदिति अब पूरी तरह उलझ चुकी थी, एक तरफ आर्यन का वादा, दूसरी तरफ दादी का डर। और सुनो, रत्ना देवी ने आखिरी बार उसकी तरफ देखा, शामली जा चुकी है, वो अब इस घर का हिस्सा नहीं है। और विश्वनाथ, उन्होंने हल्का सा रुक कर कहा, वो अक्षरा से सगाई कर चुका है, कुछ ही दिनों में शादी भी है। ये सुनते ही अदिति का दिल जैसे डूब गया। शादी? हाँ, रत्ना देवी ने धीरे से कहा, अब जो हो रहा है उसे होने दो, पुराने सच को बाहर लाकर तुम सिर्फ सब कुछ बर्बाद करोगी। अदिति की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। लेकिन दादी, अगर कभी सच खुद सामने आ गया तो? रत्ना देवी ने दरवाजा खोलते हुए कहा, तो उस दिन जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अभी ये सच बाहर नहीं आना चाहिए। इतना कहकर वो कार से उतर गईं। उनके कदम भारी थे, लेकिन चेहरे पर एक मजबूरी की सख्ती थी। अदिति वहीं बैठी रह गईं। दरवाजा खुला था, लेकिन वो बाहर निकल नहीं पा रही थी। उसके कानों में बार बार वही शब्द गूंज रहे थे, तुमने उसे झूठे इल्जाम में फंसवाया, ये सच यहीं खत्म होगा, विश्वनाथ अक्षरा से शादी करने वाला है। उसने अपने सिर को पकड़ लिया। ये सब क्या हो गया? उसकी सांसें तेज हो गईं, दिल में पछतावा, डर और एक अजीब सी घुटन। मैंने क्या कर दिया? एक गलती,
या एक जिंदगी बर्बाद कर दी। उसकी नजर हवेली के बड़े दरवाजे पर गई जहां रत्ना देवी अंदर जा चुकी थी और अब उस हवेली के अंदर उसका हर रिश्ता, हर सच और हर झूठ एक दूसरे से टकराने वाला था। अतिथि ने धीरे से कार से बाहर कदम रखा, लेकिन इस बार उसके कदमों में वो आत्मविश्वास नहीं था, सिर्फ एक डर था कि कहीं ये छुपा हुआ सच सब कुछ खत्म ना कर दे। अतिथि के कदम जैसे जमीन से चिपक गए थे। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे खुद अपनी धड़कनों की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी उसका फोन बजा, स्क्रीन पर नाम चमका, आर्यन। उसने कांपते हाथों से कॉल उठाई। हेलो, उसकी आवाज इतनी धीमी थी जैसे किसी ने उससे उसकी ताकत छीन ली हो। अदिति, क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? आर्यन की आवाज में चिंता साफ थी। बस इतना सुनना था कि अदिति टूट गई। आर्यन, उसकी आवाज भर्रा गई, सब बिगड़ गया। क्या मतलब, साफ साफ बताओ। अदिति ने गहरी सांस ली और फिर रुक रुक कर सब कुछ बता दिया। रत्ना देवी की बातें, उनका सच छुपाने का फैसला और विश्वनाथ की अक्षरा से होने वाली शादी। कुछ पल के लिए फोन के उस पार सन्नाटा छा गया, फिर अचानक आर्यन की आवाज आई, पहले से कहीं ज्यादा सख्त और हैरान। व्हाट, दीदी सच में ऐसा सोच रही हैं? अदिति चुप रही, उसकी खामोशी ही जवाब थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कर रही हैं। आर्यन की सांसें तेज हो गईं। एक झूठ को छुपाने के लिए वो पूरी जिंदगी दांव पर लगा रही हैं। लेकिन आर्यन, अदिति की आवाज कांपी, दादी कह रही हैं कि अगर ये सच बाहर आया तो सब कुछ टूट जाएगा, पापा भी। तो क्या झूठ पर घर टिकेगा? आर्यन ने बीच में ही काट दिया। अदिति, तुम खुद सोचो, अगर कल ये सच अपने आप सामने आ गया तो तब क्या होगा? अदिति के पास कोई जवाब नहीं था, सिर्फ खामोशी। मैं पीछे नहीं हटने वाला, आर्यन की आवाज अब पूरी तरह दृढ़ हो चुकी थी। ये सच पापा से छुपाया नहीं जाएगा, उन्हें जानने का पूरा हक है। आर्यन, प्लीज, अदिति लगभग विनती करते हुए बोली, अभी मत बताओ, मैं खुद सब ठीक करने की कोशिश करूंगी। अब ठीक करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है अदिति, उसने गहरी आवाज में कहा। गलती हो चुकी है और अब उसका सामना करना ही पड़ेगा। अदिति की आंखों से आंसू फिर बहने लगे। मैं आज ही पापा से बात करूंगा, आर्यन ने आखिरी फैसला सुनाया, अब ये बात और नहीं छुपेगी। आर्यन, अदिति कुछ कहना चाहती थी लेकिन कॉल कट चुका था। फोन उसके हाथ से धीरे से नीचे गिर गया और उसके साथ ही उसकी आखिरी उम्मीद भी। अब उसे साफ दिख रहा था, तूफान बस आने ही वाला था।